قرۃ العین کا ناول چاندنی بیگم، یہ اس کی کیسٹ نمبر 3 ہے۔ کلب کے طویل راستے پر موٹروں کی قطاریں، ایک کار کی روشنی ایک قدم درخت کے تنے پر پڑی، کار گزر گئی، شیخ صاحب ادھر لپ گئے۔ 6 فروری سن 1792 شیخ صاحب نے دہرایا۔ فتح سرنگا پٹم کی پہلی سالگرہ، بڑے جشن منائے گئے کلکتہ تھیٹر میں، ہال میں ضیافت، ایسا چراغاں کے نیٹو خلقت دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑی۔ نیٹو خلقت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، شاید ہمیشہ سے کمپنی کے جھنڈوں کے نیچے ٹیپو کا پرچم سر نگم کیا گیا تھا۔ تمام لیڈیز نے ساٹن کے سفید گاؤن پہنے، ان پر بھی 6 فروری 1792 کاڑھا گیا تھا۔ لارڈ کارنولس کے ساتھ ہزائنس نواب سعادت علی خان بھی جشن میں شریک تھے بطور چمچا۔ ہندوستان جنت نشان کے مسلمان حکمران ٹیپو کے خلاف انگریزوں سے مل گئے۔ ڈاٹر، اس ملک کی تاریخ کا تاریخ ترین دن کون سا تھا؟ 6 مئی 1799، رومال سے اس نے ناک پہنچی۔ کرنل مک ڈال نے شمشیر علیحدہ کی، کرنل والٹن نے جیبی کھڑی، دوربین جسے لے کر وہ غازی میدان جنگ میں گیا تھا، اور ایک جڑاؤ میتلین، اس پر اسد اللہ الغالب کندہ تھا۔ مرزا غالب؟ نہیں بے وقوف، حضرت علی شیر خدا کا لقب ہے۔ اس کا نادر کتب خانہ لوٹا، سب لندن لے گئے۔ سنو، وہ اپنی کتابیں نہایت احتیاط سے صندوقوں میں رکھتا تھا۔ لندن کی میوزیم میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ ولی تھا، جو خواب دیکھتا تھا، صبح کو قلم بند کرتا تھا، میں شب و تاریخ اوپر لکھتا تھا، یا کریم یا کارساز یا حافظ، اس احتیاط سے لکھتا تھا خواب نامہ کوئی دیکھ نہ لے۔ مقفل رکھتا تھا اور سوتے میں بھی جنگ کے نقشے بناتا تھا اور انگریزوں کو شکست دیتا۔ حضور کو اکثر دیکھتا تھا اور حضرت علی کو، اور ہفت خواجگان خرقہ پوش کو، سب کے نام اس نے لکھے، خواجہ یوسف حمدانی، خواجہ بایزید بستامی، خواجہ ابو الحسن خرقانی، خواجہ باہ الدین نقشبندی۔ خواجہ میجر بیٹسن نے اس کی فرانسیسی رائٹنگ ٹیبل کی دراز توڑی، خواب نامہ ہاتھ لگا، کورٹ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کو بھیج دیا۔ یہ حیرت انگیز ڈائری ارسال خدمت ہے، ٹیپو سلطان رات کو سوتے میں بھی ہم سے لڑتا تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے اپنی ماروتی کے قریب پہنچ گئے۔ عبد المجید ڈرائیور بھاگتے ہوئے مسجد ٹیپو سلطان سے واپس آئے۔ 14ویں کی رات، پورن ماشی، بدر کامل، صفیہ سلطان اسکول کے سنسان برآمدے میں ٹہل رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں واپس جا کر ٹیبل لیمپ جلایا، ڈالی باغ اسکول کا نیا نویلا رجسٹر نکال کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اور خلاف معمول سہلا ان کے کمرے میں آئیں۔ بڑی بھانجی نے جھجکتے ہوئے مخاطب کیا، چھوٹی خالہ، کہو، ذرا باہر چلی چلیے، ہمارے ایک نئے موکل سے مل لیجیے، بتلائیے آپ کو کیسے لگتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس شام برادری میں پنکی نے لیلا سے یہی الفاظ تو کہے تھے جو انہوں نے سن لیے تھے۔ کچھ تذبذب کے بعد کھڑی ہوئی بھانجی کے ساتھ چیمبر میں پہنچی۔ ایک خوشپوش گھنے کھچڑی بالوں والا خوبرو آدمی چرمی کرسی سے اٹھا، تسلیم عرض کی، چھوٹی خالہ، سید ارشد حسین، مسٹر طاہر علی سروش کے برادر نسبتی، یعنی لیلا کے ماموں۔ آپ کو معلوم ہے نا، مندر مسجد کے اس کی پیروی اب میں کر رہی ہوں، یہ اسی سلسلے میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ تشریف رکھیے، ارشد حسین نے اس طرح کہا گویا وہ میزبان تھے۔ अर्शद साहब हमारी खाला माहिर तालीम है, डबल एमए और पीएचडी, एजुकेशन में डॉक्टरेट किया है। डॉक्टर साहब हम भी इरादा कर रहे हैं कि फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों के लिए कानपुर में एक स्कूल खोलें। आप चलकर जगह देख लीजिए, आपके मशवरे बहुत कीमती साबित होंगे। ज़रूर, अरे खाला तो एक किंडर गार्डन भी शुरू करने वाली हैं और एक इनका स्कूल डालीबाग में है कल ही से। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ डिनर के लिए तशरीफ ले चलिए। सफिया ने घबराकर भांजी को देखा। चलिए ना छोटी खाला, अर्शद साहब कह रहे हैं, हम सब जाएंगे। तो ये डिनर पहले से तय कर लिया गया था, अब आप भी जाकर झटपट तैयारी पकड़िए। सॉरी, आपको पहले नहीं बतलाया, हम और अर्शद साहब इस मुकदमे की बात में लग गए थे। सफिया अपने ड्रेसिंग रूम में आई, अभी सन्नाटे में थी, हाथ पांव सर्द। सारे घर में अचानक बड़ी गहमागहमी सी महसूस हुई। गालिबन आज शाम ही शहला ने सबको बतलाया था। खादमाएं भागी भागी फिर रही थीं, किवाड़ खुलते थे, बंद होते थे, बंद होते थे, फिर खुलते थे। चंद लम्हों बाद शहला की कार रवाना हुई। अर्शद हुसैन सामने, सलीमा, बन्नी और जिम्मी पिछली सीट पर, सफिया फिर गैलरी में आई। सफिया खामोशी से बरसाती की तरफ चल पड़ी। सफिया ने बेदिली से एक दो बार हॉर्न बजाया, फिर कार की खिड़की से लगकर शब माह के नजारे में खो गई। शहला के दफ्तर में फोन की घंटी बजी। टोनी ने बात की। जी हाँ, शुक्रिया जी, बस फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स सब कार्लेटन जा रहे हैं, वहीं तशरीफ लाइए जी। मियाँ अब्बा अभी पहुंचते हैं। पिछली सीट पर सफिया आराम से बैठ गई, पांव फैलाए, चप्पल उतारे, अंगूठे हिलाए, फिर चप्पल पहने। फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स इंगेजमेंट डिनर एक खुश वुड रोज टब से रंगीन चबूतरे पर से गिरा। बरसाती से आवेजा उसकी बेल हवा में लरसी। धूप में बेल के जर्द गुलाब मुरझाकर पानी वुड से तरशे हुए फूल मालूम होते थे। खुदा की कुदरत। विक्की जब दीवाने मुफक्किर शायर थे, चार दिन की चांदनी को चंद्र प्रभा पुकारते। इन दिनों कादमरी पढ़ रहे थे, तश्बीही इस्तारे में गुफ्तगु। कादमरी हीमकोट से वतरला नदी के तट पर आई थी। चांदनी हिमालय से हमारी नदी के किनारे उतरी हैं। अरे भाई सफिया, कासिम साहब ने अपनी नई कोठी का नाम नदी किनारे रख लिया है, डेम गुड। अच्छा भाई चांदनी, बात सुनो, राजकुमार चंद्रपेट चांद का बासी था, हम भी महताब गुजीदा हैं। और सफिया बेगम, तुम माँ सविता देवी की तरह अछूर झील के किनारे बैठी हो। चांदनी भी अक्सर इस चबूतरे पर आकर बैठती थी, निटिंग करती, पाक साफ डाल से टूटी। इतनी बड़ी दुनिया में उसका मान गान करने वाला कोई ना था। आग हवा पानी, अनासिर ने उसका कतबा लिखा, विक्की ने अपना कतबा भी सोच लिया। अच्छा जनाब, ये भी हो गया, अब इसके बाद लाजवाब विक्की जो बात करेंगे अनोखी। स्कूल का नाम सोचने के चक्कर में आज मगरिब के वक्त अस्तगफार की तस्बीह भी रह गई। तोबा अस्तगफार, तोबा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। उंगलियों पर गिन लो यक लख्त। सियाह साड़ी में मलबूस आंचल से सर ढांपे सफेद सूरत वाली एक औरत, चीनी की मूरत, चांदनी में चमकते चबूतरे पर नमूदार हुई। झुककर एक वुड्रोज उठाया, पलटी, सफिया सुल्ताना को निगाह भर के देखा, आंखें चमकी, चेहरे पर जैसे सफेद पाउडर। अरे, सफिया के मुंह से बेसाख्ता निकला, बेला। वो फर्राटे के साथ चबूतरे पर से गुजरी और बाग के सुनहरे धुंधलके में गायब हो गई, तेज रफ्तार जैसे बादे सरसर। सफिया हैबत ज़दा रह गई, घिग्गी बंधी, हल्के में कांटे चुभे, लर्जा चढ़ा, ठंडे पसीने आए, पिंडलियों पर चिमटियां रहेंगी। बमुश्किल हिम्मत करके दोबारा पुकारना चाहा, बेला। उनकी अंदरूनी आवाज ने बहुत ही आहिस्ता से जवाब दिया, चांदनी बेगम। जरीना रानी दुल्हन और विक्की मियां टोनी को पुकारते गैलरी में आ चुके थे जब दफ्तर में फिर टेलीफोन बजा। विक्की लपक कर अंदर गए और शैला से बात की। हाँ 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 हाँ, अभी आए, तुम्हारी तारीख ही तय कर रहे थे, बस भाई 5 मिनट में पहुंचे। नौजवान टोनी जकन भर के बरसाती में कूदे, कार का दरवाजा खोला। इसी फुर्ती से उनके वालिद अगली सीट पर मुड़कर उचटती नजर डाली। ओह, सफिया तो इंतजार करते करते सो गई। जरीना ने पिछला दरवाजा खोला। उठो भाई, ये लो नई शाल। वो टस से मस न हुई। सफिया इसी तरह सीट पर नींद दराज रही। जरीना ने नूरन को बुलाकर उनके पैरों की तरफ इशारा किया। खादिमा ने दोनों कूल्हा पूरी आहिस्ता से उतारे। सफिया बदस्तूर आंखें मूंदी साकत लेटी रही। नूरन ने एक हरा सैंडल उनके दाएं पांव में पहनाना चाहा। अचानक दहल कर चिल्लाई। जरीना और रानी दुल्हन ने सफिया को झंझोड़ा और खौफनाक चीखें मारी। मरने से कुछ देर पहले बरज़ख कायम कर दी गई। सब नक्शा सामने आए। समावात में नूरानी पैकरों के शामियाने लगे हैं। नीचे कठपुतलियां चल रही हैं। आवाजें सब में से निकलती मालूम होती हैं। आवाज एक ही है। अपशंदों में लिखा है कि हक हकीकत वाहिद है, लेकिन मुतनव्वे और कसीरुल जहद है। डॉक्टरों की राय थी शदीद इस्तरारी कैफियत में कोई अचानक ज़हनी धक्का पहुंचने के बायस हरकतें कल्ब बंद हुई। मरहुमा के पुराने न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक अंदरूनी सदा के अलावा हेलोसिनेशन यानी फरेब नज़र भी एक वजह हो सकती थी। सुबह को जब जनाजा एहाता सत्तारा बेगम वारिद हुआ, मोटरें आहिस्ता आहिस्ता शहर की जानिब बढ़ी। मकान पर खवातीन का तांता बंधा। बॉबी अपने लड़के के सहारे मोटर से उतरे। बड़े भाई और बहन के गले मिलकर खूब रोए। बरसाती से मुल्लिक चबूतरे पर कुरान खानी जारी थी। अंदर मरहुमा के कमरे में चांदनी का फर्श कर दिया गया था। उनकी बहन और भावज तिलावते कलाम मजीद के बाद गांव तकिए से लगी चुपचाप बैठी थीं। औरतें अपना अपना सिपारा पढ़कर चली जाती, पिछले बरामदे और ड्राइंग रूम में जा बैठती। बीबियां टुकड़ियों में बैठती जा रही थीं। किसी बात पर हंसी आती तो फौरन जब्त करके चेहरे पर मुनासिब गमगीनी तारी कर लेती।
इसके साथ ही आपकी किताब चांदनी बेगम अपने इख्तिताम को पहुंची। ये इस किताब की कैसेट नंबर 3 और आखिरी कैसेट है। इसको आपके लिए पढ़ा नासिर काजमी ने, अप्रीच किया जाहिद अब्दुल्ला ने और कंट्रोल्स पे हैं बाबर जॉन। इस किताब की मुसन्निफा हैं कुरतुलैन हैदर। अगर आप हमसे सौती किताबों के सिलसिले में रابطہ कायम करना चाहें तो अमान या साइमर से टेलीफोन नंबर 2902-26 इस्लामाबाद या पी ओ बॉक्स 1652 इस्लामाबाद पर रابطہ कायम ज़रूर कीजिएगा। ये PFFP ऑडियो वर्ल्ड की प्रोडक्शन है और हमारी सौती कुतुब की कॉपी बनाना कानूनन जुर्म है। अब इंशाल्लाह आपसे फिर किसी किताब में मुलाकात होगी।